पहला सवाल तो ये है कि वज़ू करके चमड़े के मोज़े पहन ले, अब जब तक वज़ू न टूटे मोज़े उतार कर फिर से पहन सकते हैं? हाँ, अगर वज़ू नहीं टूटा, वज़ू करने के बाद चमड़े के मोज़े पहन लिए और वज़ू टूटा नहीं है तो मोज़े उतार भी सकते हैं, और वज़ू टूटने से पहले पहले दोबारा पहन लें। अभी तक तो मोज़े के कोई अहकाम शुरू ही नहीं हुए हैं इसलिए कि वज़ू टूटा ही नहीं है, तो वज़ू टूटने से पहले पहले मोज़े पहन लें, इसलिए कि पहनने से 24 घंटे नहीं हैं, वज़ू टूटने के बाद से 24 घंटे शुरू होते हैं। तो किसी ने सुबह वज़ू किया, मोज़े पहन लिए, दोपहर का वक्त हुआ, उसका वज़ू है अभी तक, मोज़े पहने हैं उतारे हों फ़र्क नहीं पड़ता है। अब जब उसका वज़ू टूटने वाला था, उससे पहले पहले मोज़े पहन लिए, पहनने के बाद अब वज़ू टूटा है, वहाँ से 24 घंटे तक उसको मसाह करने की इजाज़त होगी। मशवरे की बात आई तो सवाल ये है कि अगर मर्द को सिर्फ़ बाहर के लोगों से मशवरा करना हो, बीवी से मशवरा न करना हो, मशवरा करने में पाबंदी नहीं है कि किससे करे, मशवरा करने में पाबंदी नहीं है कि किससे करे, वो इंसान को जिससे जिसके मशवरे पर ज़्यादा तसल्ली होती हो उससे मशवरा करेगा, बिज़नेस करना है तो बिज़नेस के लाइन के जो लोग हैं उनसे मशवरा करेगा, जिस किस्म की चीज़ होती है उससे मशवरा करता है, कोई दीनी मसला है तो किसी उस तरह के इल्म रखने वाले से मशवरा करेगा। तो मशवरा करने में ये पाबंदी नहीं किससे करना है, लेकिन जो इस मैदान को इस फील्ड को कुछ जानता हो उससे मशवरा करेंगे तो ज़ाहिर है अच्छा मशवरा मिलेगा। और बीवी से मशवरा करने की जहाँ तक बात है तो हदीस में आता है जब अपनी बच्ची का इंसान कहीं रिश्ता कराना चाहे, निकाह कराना चाहे, तो उनकी माँ से मशवरा कर लिया करे, वहाँ बीवी से मशवरा करना है, इसलिए कि वो बच्ची की को ज़्यादा अच्छी तरह पहचानेंगे, माँ है बच्ची को ज़्यादा अच्छी तरह पहचान सकेगी, उससे खुलकर बात कर सकेगी, तो वहाँ पर हदीस में आता है मशवरा। तो इसलिए मशवरा किस फन में करना है, किस बारे में करना है, उसके लिहाज से देखा जाएगा। अच्छा, इंशाअल्लाह ये सुनने वालों के इखलास की बरकत है कि वाक़ियतन बाज़ लोगों का इखलास होता है, सबको उसका फ़ायदा होता है, कि बाज़ लोग बहुत इखलास के साथ तफसीर और हदीस के दरस में शामिल होते हैं तो उसका वाक़ियतन फ़ायदा होता है और सबको फ़ायदा महसूस होता है, इसलिए कि अल्लाह ताला जब देते हैं तो ऐसा नहीं कि एक को दें और एक को ना दें, सबको मिल जाता है, तो मुझे भी फ़ायदा महसूस होता है, ख़ुद मैं अपनी ज़रूरत समझ कर ये दर्स का जो सिलसिला है मैं किसी पर एहसान नहीं कर रहा, ख़ुद मेरी अपनी गरज़ है और मेरा अपना फ़ायदा है, इसलिए ये तफसीर और हदीस का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह जारी है, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह जारी ही रहे। क़ज़ा रोज़े रखने की कोई तरतीब है कि पुराने वाले पहले रखे जाएं? कोई ख़ास तरतीब ज़रूरी नहीं है, क़ज़ा रोज़े हों तो इंसान आसान ये है कि जो सबसे पहला रोज़ा मेरे ज़िम्मे था उसकी क़ज़ा कर ले, या सबसे आखिरी रोज़ा ज़िम्मे था उसकी क़ज़ा कर ले, और अगर याद है कि कौन कौन से रोज़े कौन से रमज़ान में तो उस तरतीब से कर लें कि इस रमज़ान के पहला दूसरा तीसरा रोज़ा, नहीं याद है तो सबसे आखिरी सबसे पहला रोज़ा उस तरतीब से कर लें। हाँ, वाकई अल्लाह ताला हज़रत रहमतुल्लाह अली को जज़ाए खैर अता फ़रमाए, उनके दराजात बुलंद फ़रमाए, और हमारा ये जितना भी ये जमा होने का सिलसिला है अल्लाह ताला हज़रत रहमतुल्लाह अली के लिए कई सारे के सवाब का ज़रिया बनाए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सवाल ये कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब इस्माईल अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए गए थे तो देखा कि उनकी जो अहलिया हैं उसमें वो बात नहीं है जो एक इस तरह के घराने में या आगे जाने वाले इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल जो चलने वाली थी, जिससे सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे जाकर पैदा होने वाले थे। तो आगे जो अंबिया का सिलसिला जो चल रहा था इब्राहिम अलैहिस्सलाम, तो बहुत ऊंचे अल्लाह ताला ने उनको बहुत ही ऊंचा मकाम दिया था। तो वो जिस नज़र से देख रहे थे, उन्होंने देखा कि ये औरत इस काबिल नहीं है, इसमें वो बात नहीं है। तो उन्होंने इशारतन कहा था, मैं जब इस्माइल आए, जब मेरा बेटा आए, इस्माइल आए, या जो ये भी कहा था तुम्हारा शोहर आए, तो उसको बता देना, जिसका मतलब यह था कि बीवी इस बीवी को तलाक देकर दूसरी से निकाह कर ले। हर बाप मुख्तलिफ होता है, हर एक की नज़र मुख्तलिफ होती है। ये कहने वाले इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे। हर वालिद का वो हुक्म नहीं है जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का हुक्म है। डॉक्टर ने कहा विटामिन डी इस्तेमाल करना है, उसमें जेलेटिन है। जेलेटिन का इस्तेमाल तो सही नहीं है, लेकिन विटामिन डी की बहुत सी और उसके बदल मिल जाते हैं जिसमें जेलेटिन नहीं भी होगा। तो ऐसे कोई इस्तेमाल कर लें जिसमें जेलेटिन ना हो। हाँ, अगर कोई ऐसी बीमारी है, बाज़ों के लिए बीमारी ऐसी होती है कि बीमारी ऐसी है कि विटामिन डी जो इस्तेमाल करना है बहुत तेज़ वाली, और वो कैप्सूल के अलावा नहीं है और वो कैप्सूल जेलेटिन वाली ही, अगर ऐसी कोई सूरत है और उसका कोई बदले में कोई और उसकी दवाई न हो, ऐसी कोई दवाई न हो, तो फिर इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना डॉक्टरों से मशवरा कर ले। हो सकता है कि इसके बदले में दूसरी चीज़ मिल जाए। विटामिन डी तो आम मिल जाता है और उसमें लिक्विड वगैरह भी मिलता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि बाज़ ऐसी सूरतें होती हैं कि जितना पावरफुल उनको जो चाहिए वो शायद नहीं मिलता बग़ैर कैप्सूल के। तो अगर ऐसी कोई सूरत हो कि और कोई उसके बदल ना हो, तो फिर इस्तेमाल कर सकते हैं मजबूरी में इलाज के तौर पर, वरना अगर उससे बच जाएं तो अच्छा है। सवाल यह है कि औरत मक्का मुकर्रमा जाती है, वहाँ दाखिल होने से पहले उसे हैज शुरू हो जाता है, अब अगर वो अहराम उसके बांधना ज़रूरी है या नहीं, अगर अहराम बांध कर जाती है तो उसके लिए 9-10 दिन तक अहराम में रहना मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए ये सूरत होगी कि फिर मक्का मुकर्रमा जाने के बजाय मीकात से तजावुज़ करने करने के जब वक्त आए, तो मक्का मुकर्रमा में दाखिल होने की नीयत के बजाय कहीं और पहले चले जाए, कहीं और जाने की नीयत कर ले और वहाँ चले जाए। और वहाँ जब चली जाए, मीकात के अंदर चले गए, मसलन यहाँ से जा रहे हैं, तो फ़िलहाल मक्का जाने का इरादा ना करें, जिद्दा में ठहरने का इरादा कर लें। और उसकी बेहतर सूरत यह है कि मसलन थोड़ी देर जब मक्का में जिद्दा में ठहर जाएँ, एक रात ठहर जाएँ, आराम भी कर लें। मक्का जिद्दा जब चले गए, अब जिद्दा जाने के बाद फिर जब मक्का जाएंगे, तो वहाँ जिद्दा से मक्का जाने में अहराम बांधना ज़रूरी नहीं है। तो ये एक सूरत हो सकती है, और भी सूरतें हैं लेकिन ये एक आम सी सूरत है। सवाल ये है कि क्या अल्लाह ताला से अपनी दुआएं मांगना चाहिए कि फ़लाँ काम हो जाए, इस जगह नौकरी मिल जाए, ये सब कुछ अल्लाह ताला पर छोड़ देना चाहिए, अल्लाह की मर्ज़ी पर। जो चीज़ इंसान ज़ाहिर में ये समझता है कि इसमें खैर है, तो इंसान ये मांग ले कि या अल्लाह अगर इसमें खैर है तो ये चीज़ अता फ़रमा दे, ये चीज़ अता फ़रमा कर उसमें खैर डाल दे, इस तरीके से दुआ मांगनी चाहिए। सवाल ये है कि शोहर बीवी को छोड़कर कहीं सफ़र पे जाना चाहे, तो हासिल ये है कि इजाज़त लेना और पूछना ज़रूरी है या नहीं, जबकि बीवी न चाहती हो। बहुत सी चीज़ें वो होती हैं जिसको पहले भी हमने पढ़ा था कि वाजिब होना अलग चीज़ है। तो वाजिब होने के लिहाज से अगर सवाल है, तो मर्द के ज़िम्मे वाजिब नहीं है, फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है कि कहीं सफ़र पे जाना चाहे तो बीवी से इजाज़त लेकर जाए, बग़ैर इजाज़त के भी वो सफ़र में जाना चाहे तो जा सकता है। ठीक है, किसी ने लिखा है कि विटामिन डी भी मिल जाती है जिसमें जेलेटिन वगैरह नहीं होता। बहरहाल मालूम कर सकते हैं, मिल जाएगा इंशाल्लाह। और लिंक भी भेजिए किसी ने। एहराम में मास्क पहन सकते हैं? नहीं पहनना चाहिए। पहले तो वहाँ के उसूल में ज़रूरी था, इसलिए किसी को बहुत अजीब यानी किसी को वाकई बीमारी हो और बीमारी का इलाज ये हो, बहुत कम ऐसा होता है, सिर्फ लोगों का ख्याल होता है। तो एहराम की हालत में चेहरे को खुला रखना, ये चेहरे पर कपड़ा लगा कर रखना, मास्क वगैरह लगा कर रखना मना है, तो नहीं पहनना चाहिए, मना है। अच्छा, ठीक है इंशाल्लाह। फिर अच्छा, आज तो जुमेरात है, तो रात को इंशाल्लाह फिर 9 बजे दुरूद शरीफ और दुआ के लिए जमा होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, एक और सवाल आ गया तो फिर उसको भी कर लेते हैं। सवाल यह है कि अगर कभी इबादत करने का दिल नहीं चाहता, तौफीक नहीं मिलती, या इबादत कर रहे हैं दिल नहीं चाहता, तो हम ये समझते हैं कि गुनाहों की वजह से है या अल्लाह ताला हमसे नाराज़ हैं। दुआ की और दुआ फौरन कबूल नहीं हुई, तो ये ख्याल होता है कि अल्लाह ताला हमसे नाराज़ हैं। और ये सज़ा के तौर पर हमें हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही। अपने आप को इंसान वैसे भी समझता रहे कि हम हमारे ज़िम्मे अल्लाह के जो हकूक़ हैं वो हम अदा नहीं कर रहे, वो तो हकीकत है, लेकिन अल्लाह ताला उसके बावजूद बहुत ज़्यादा मेहरबान है। हमारे बग़ैर मांगे हमें इतनी चीज़ें दी हैं, तो मांग कर क्यों नहीं देंगे? हिकमतें होती हैं, मसलहतें होती हैं, जिसकी वजह से अल्लाह ताला कभी कोई चीज़ नहीं देते, कभी किसी चीज़ के देने में ताखीर होती है। इस वक्त हम समझ रहे हैं कि ये हमारे लिए बेहतर है, लेकिन हकीकत में किसी और में बेहतरी होती है, खैर होती है। ज़िंदगी में इंसान ऐसे वाक़यात देखता रहता है, और वो आयत याद आती रहती है कुरान करीम की, आसा अन तकरहू शैअन वह हुवा खैरुल लकुम, शायद तुम एक चीज़ को नापसंद करो लेकिन वो तुम्हारे हक़ में बेहतर होती है। वाज़ा अन तुहिब्बू शैअन वह हुवा शर्रुल लकुम, कभी ऐसा होता है कि इंसान कोई चीज़ पसंद करता है, इंसान के हक़ में वो बेहतर नहीं होती। तो वैसे तो हमारे आमाल ऐसे हैं कि वाकईतन हमें जो नेमतें मिल रही हैं वो भी ना मिले, लेकिन अल्लाह ताला का मामला बड़ा फजल और मेहरबानी वाला है। ये समझना कि हमारी दुआ कबूल नहीं हुई ये हमारे गुनाह की सज़ा है, या ठीक है अपने आमाल पर नज़र रखें, लेकिन ये चीज़ इंसान को नाउम्मीदी तक ना पहुँचा दे। ऐसा ना हो कि अल्लाह के रहमत से इंसान नाउम्मीद होने लगे। नहीं, मांगता रहे, अल्लाह ताला तो काफिरों की दुआ पे कबूल फरमाते हैं, लेकिन इंसान लगा रहे, कोशिश करता रहे। हमारा काम कोशिश करना है, मायूस होना नहीं। तो ये चीज़ इंसान को मायूसी तक ना पहुँचाए, ये ज़रूरी है। बाकी ये तो समझते ही रहना चाहिए कि हमारे आमाल वाक़ेतन ऐसे नाक़िस हैं कि हम अल्लाह ताला की जो हमारे ज़िम्मे जो हकूक़ हैं अल्लाह ताला के, वो हमसे अदा नहीं कर रहे। वो बात तो सही है, अगर इबादत में दिल नहीं लगा रहा और एहसास हो रहा है कि हमारे गुनाह की वजह से, तो इंसान मज़ीद इस्तग़फ़ार और ज़्यादा हिम्मत से आगे बढ़े, ताकि उस गुनाहों की ज़ुल्मत और दूर हो और फिर इबादत में दिल लगने लग जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।